आप सुन रहे हैं आशा की किरण और जीवन में नया सूर्योदय लेकर आई हूं मैं किरण आचार्य। सभी नन्हे मुन्ने श्रोताओं को किरण दी का प्यार भरा नमस्कार। हेलो, कैसे हो फ्रेंड्स आप? जी हाँ, पिछली बार मैंने कहा था कि मैं चाहती हूँ कि मुझे आपके तुतलाते तुतलाते बोलों वाले मैसेज मिलेंगे तो मुझे बहुत मज़ा आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कुछ भी मांगा होता तो मुझे मिल जाता, क्योंकि उसकी दिन मेरे पास एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची का मैसेज आया और इतनी तुतलाती भाषा में उसने बोला है, बहुत आनंद आ रहा है। और आपको बता दें कि वो श्रीमद् भगवद गीता भी अपनी मम्मी के साथ बैठ करके सुनती हैं आशा की किरण में, और पंचतंत्र की कहानियाँ भी सुनती हैं, और बीच बीच में सवाल भी करती जाती हैं अपनी मम्मी से, इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है, और पूछती हैं अगली कहानी कब आएगी। तो ये छोटी सी बच्ची है, इसका नाम है याशिता शर्मा। आशा की किरण की बहुत बड़ी फ़ैन है, तो आइए आशिता शर्मा की तुतलाती प्यारी प्यारी आवाज़ में ये मैसेज हम सुनते हैं और उसके बाद शुरू करेंगे पंचतंत्र की कहानी। तो थैंक यू बोलते हैं याशिता को कि इस प्यारी सी बच्ची ने हमारा उत्साहवर्धन किया, और इसी तरह आप भी हमें मैसेज भेजते रहिए। चलिए सुनते हैं याशिता का मैसेज।
जय श्री कृष्णा, मैं याशिता शर्मा क्लास फर्स्ट में हूँ। मैं आज आपको कुछ बताना चाहती हूँ। श्री कृष्णा किरण आंटी, आपको थैंक यू अच्छी अच्छी कहानी सुनाने के लिए। मुझे आपकी सुनाई कहानी बहुत पसंद लगती है। बंदर वाली कहानी भी बहुत अच्छी लगी। उससे मैंने एक बात सीखी, डिसिप्लिन कान में देखकर लड़ाई नहीं करना चाहिए। आज आमे कहानी सुनाई बहुत, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। आंटी मुझे बहुत, वो डोल में पोल में बहुत अच्छा लगा। मैं मम्मी के साथ गीता भी सुनती हूँ, मम्मी बताती है। श्री कृष्ण बहुत बड़े गॉड है
जी,
जिन्होंने अच्छी अच्छी शिक्षा दी। श्री कृष्ण गोविंद, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्णा 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 श्री हरे, कृष्णा कृष्णा कृष्णा, बाय बाय।
आओ बच्चों, प्यारे बच्चों, जल्दी से आ जाओ, कहानी सुनो, कहानी सुनो, पंचतंत्र की कहानी सुनो, कहानी सुनो, बुद्धि बढ़ाएगी, सफल बनाएगी, जीवन का ये मूल मंत्र सुनो, कहानी सुनो, गेम वेम सब छोड़ो बच्चों, नानी की जैसी कहानी सुनो, आशा की किरण पॉडकास्ट पर, किरण दी की जुबानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, पंचतंत्र की कहानी सुनो।
क्या बात है, अब तो छोटे छोटे बच्चे भी हमारे गाने के साथ साथ गाने लगे हैं, कहानी सुनो, कहानी सुनो। हाँ बच्चों, तो कहानी सुनने का समय आ गया है। मुझे पता है आप बहुत इंतज़ार करते हो कि अगली कहानी कब आएगी, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम कोशिश करते हैं कि जल्दी से जल्दी पंचतंत्र की कहानी लेकर हमारे प्यारे प्यारे बच्चों के पास हम आ जाएं। तो पिछली बार हमने कहानी सुनी थी, कौन सी वाली याद है आपको? हमने सुनी थी कर्टक और दमनक की बातें, और दमनक जो है वो कर्टक को कह के गया कि हम सिर्फ केवल भरपेट खाने पे ही संतुष्ट ना रहें, हम पिंगलक अभी डरा हुआ है और उसका फ़ायदा उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि फिर से मंत्री पद तक पहुँच जाए। इसी बात को ध्यान में रखकर दमनक पिंगलक शेर के पास गया और उसने बड़ी चतुराई से बात की उससे और इस बात पर मना लिया कि सिर्फ नदी के तट से आने वाली गर्जना या बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, हमें ये देखना चाहिए कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो धमनक ने कहा कि ये तो अगर आप बिना ये जांच किए हुए कि ये गर्जना किसकी है चले जाएंगे यहाँ से इस जंगल को छोड़ के तो ये तो गोमायु गीदड़ जैसी बात हो जाएगी। तो फिर पिंगलक ने भी जानना चाहा कि गोमायु गीदड़ कौन है। तो बच्चों आज हम सुनते हैं गोमायु गीदड़ की कहानी जो धमनक ने पिंगलक को सुनाई थी। बच्चों ऐसा हुआ कि एक बार एक जंगल के निकट दो राजाओं के बीच घोर युद्ध हुआ। एक जीता दूसरा हारा। सेनाएं अपने अपने नगरों को लौट गई। बस सेना का एक ढोल पीछे रह गया। उस ढोल को भाट व चारण रात को वीरता की कहानियां सुनाते थे। तो भाट जो होते थे जब युद्ध के बाद रात हो जाती थी तो उनके पूर्वजों की वीरता की कहानियां सैनिकों को सुनाते थे और जिससे वे फिर से सुबह उठकर वीरता से युद्ध को लड़ते थे। उसके लिए ढोल भी साथ साथ बजता था। हुआ यूं कि युद्ध के बाद एक दिन आंधी आई। आंधी के जोर से वह ढोल लुढ़कता पुड़कता एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनी ढोल से इस तरह सट गई थी कि तेज हवा चलते ही ढोल पर टकरा जाती थी और ढमाढम 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 की गुंजायमान आवाज होती। एक गीदड़ उस क्षेत्र में घूम रहा था। मैं ढोल की आवाज सुनी वो बहुत डर गया, बड़ा भीत हुआ। ऐसी अजीब आवाज बोलते पहले उसने किसी जानवर को नहीं सुना था। वह सोचने लगा कि यह कैसा जानवर है जो ऐसी जोरदार बोली बोलता है, ढमाढम 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 ढमाढम। गीदड़ छिपकर ढोल को देखता रहा यह जानने के लिए कि यह जीव उड़ने वाला है या चार टांगों पर दौड़ने वाला। एक दिन गोमायु गीदड़ झाड़ी के पीछे छुपकर ढोल पर नजर रखे था। तभी पेड़ से नीचे उतरती हुई एक गिलहरी कूद कर ढोल पर उतरी और हल्की सी आवाज हुई ढम। गिलहरी ढोल पर बैठी दाना कुतरती रही। गोमायु गीदड़ बड़बड़ाया, ओह तो यह तो कोई हिंसक जीव नहीं है, मुझे भी डरना नहीं चाहिए। गोमायु गीदड़ फूंक फूंक कर कदम रखता ढोल के निकट गया और उसे सूंघा। ढोल का उसे न कहीं सिर नजर आया और न पैर, क्योंकि वो तो उसको एक जानवर समझ रहा था। तो इसके कहीं सिर भी नहीं है, कहीं पैर भी नहीं है। तभी हवा के झोंके से टहनियां ढोल से टकराई और क्या आवाज हुई, बोलिए आप क्या आवाज हुई बच्चों, ढमाढम ढमाढम। और गोमायु गीदड़ उछल कर पीछे जा गिरा, डर गया था वो। अब समझ आया, गोमायु गीदड़ उठने की कोशिश करता हुआ बोला, यह तो बाहर का खोल है, जीव इस खोल के अंदर है। आवाज बता रही है जो कोई जीव इस खोल के भीतर रहता है वह मोटा ताजा होना चाहिए, चर्बी से भरा शरीर, तभी ये ढमाढम ढमाढम की जोरदार बोली बोलता है। अपनी मान में घुसते ही गोमायु गीदड़ बोला, ओ गीदड़ी दावत खाने के लिए तैयार हो जाओ, एक मोटे ताजे शिकार का पता लगा कर आया हूं। गोमायु गीदड़ की पत्नी पूछने लगी, तुम उसे मारकर क्यों नहीं लाए। गीदड़ ने उसे झिड़की दी, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह मूर्ख नहीं हूं, वह एक खोल के भीतर छिपा बैठा है। खोल ऐसा है कि उसमें दो तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। मैं एक तरफ से हाथ डालकर उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वह दूसरे दरवाजे से न भाग जाता। चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर गए। जब वे निकट पहुंच ही रहे थे कि फिर हवा से टहनियां ढोल पर टकराई और ढम ढम की आवाज निकली। गीदड़ गीदड़ी के कान में बोला, सुने आवाज, जरा सोच, जिसकी आवाज इतनी गहरी है वह खुद कितना मोटा ताजा होगा। दोनों ढोल को सीधा करके दोनों ओर बैठ गए और लगे दांतों से ढोल के दोनों चमड़ी वाले भाग के किनारे फाड़ने। जैसे ही चमड़ियां कटने लगी, सियार बोला,
होशियार रहना, एक साथ हाथ अंदर डालकर शिकार को दबोचना है।
दोनों ने हूं की आवाज के साथ ढोल के भीतर हाथ डाले और अंदर टटोलने लगे, पर अंदर कुछ था ही नहीं बच्चों, बस एक दूसरे के हाथ ही पकड़ में आए। दोनों चिल्लाए,
यहां तो कुछ भी नहीं है,
और वे माथा पीट कर रह गए। तो इस बात से यह शिक्षा मिलती है मेरे नन्हे मुन्ने साथियों, मेरे बच्चों, बड़ी बड़ी शेखी मारने वाले लोग भी ढोल की तरह ही अंदर से खोखले होते हैं, या फिर हमें सिर्फ किसी को देखकर ही विश्वास नहीं करना चाहिए, हमको उसको आजमाना चाहिए, उसके बारे में पता लगाना चाहिए, फिर विश्वास करना चाहिए। तो वो समझे थे कि ढोल बड़ी आवाज़ करता है, इसके अंदर कोई जानवर होगा जो आज हमारा भोजन बनेगा, लेकिन ढोल के अंदर तो क्या थी, पोल। तो ये थी ढोल में पोल की कहानी जो पिंगलक को दमनक ने सुनाई। यह कहानी सुनने के बाद पिंगलक ने कहा,
भाई मैं क्या करूं, जब मेरा पूरा परिवार और सभी साथी भयभीत होकर भागने पर तुले हैं तो अकेला मैं ही कैसे धैर्य से रह सकता हूं।
दमनक ने कहा,
इसमें आपके सेवकों का क्या दोष है, जैसा मालिक करेगा वैसा ही सेवक करेंगे। तो भी आप तब तक यहां ठहरिए जब तक मैं उस आवाज के विषय में ठीक ठीक पता न लगा लूं।
पिंगलक ने आश्चर्य से पूछा,
क्या तुम वास्तव में वहां जाने की सोच रहे हो?
दमनक ने कहा,
स्वामी की आज्ञा से तो योग्य सेवक कोई भी काम कर सकता है, चाहे उसे सांप के मुंह में हाथ डालना पड़े या समुद्र ही पार करना पड़े। राजाओं को चाहिए कि ऐसे ही सेवक को सदा अपने निकट रखें।
पिंगलक शेर ने कहा,
अगर ऐसी बात है तो जाओ भद्र, तुम्हारा मार्ग मंगलमय हो।
दमनक उनको प्रणाम करके आवाज की दिशा में चल पड़ा। तो फिर उसके बाद क्या हुआ ये हम बताएंगे अगली बार कहानी में। तो आपके प्यारे प्यारे मैसेज मुझे मिल रहे हैं, कुछ हमारी बड़े बच्चे भी इसको सुन रहे हैं, बड़े भी सुन रहे हैं, छोटे बच्चे भी इनको सुन रहे हैं, और आपके मैसेज मुझे मिल रहे हैं। सचमुच मैसेज मिलते ही और मुझे लगता है कि बस अब अगली कहानी जल्दी से पढ़कर आप लोगों को सुना दूं, ताकि फिर आप बहुत सारे मैसेज मुझे भेजोगे। इसके अलावा बीकानेर से अनुश्री दाधीच ने हमको लिखकर भेजा है कि वो कहानी पढ़ना चाहती हैं, मुझे मैसेज भेजी है, और बगुला भगत की कहानी वो उनके आवाज़ में हम आपको सुनवाएंगे। तो वो कहानी जब हमारी आएगी तब हम उसको शामिल करेंगे। तो बच्चों इसी तरह आप भी इस कार्यक्रम में भाग ले सकते हो। कौन सा कार्यक्रम है? पंचतंत्र की कहानियाँ। तो बच्चों अभी पंचतंत्र की कहानियों से दीजिए किरण दीदी को विदा। गुड बाय, टाटा, नमस्ते।
आओ बच्चों, प्यारे बच्चों, जल्दी से आ जाओ, कहानी सुनो, कहानी सुनो, पंचतंत्र की कहानी सुनो, कहानी सुनो, बुद्धि बढ़ाएगी सफल बनाएगी जीवन का ये मूल मंत्र। सुनो कहानी सुनो, गेम वेम सब छोड़ो बच्चों, नानी की जैसी कहानी सुनो। आशा की किरण पॉडकास्ट पर, किरण दी की जुबानी सुनो, कहानी सुनो, कहानी सुनो, पंचतंत्र की कहानी सुनो।
आप सुन रहे हैं आशा की किरण, और जीवन में नया सूर्योदय लेकर आई हूँ मैं किरण आचार्य।